ഹരി കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സ് നമ്പർ 7. ये अत्यंत ही प्रख्यात और बहुत ही प्रिय सबका श्लोक है और इस भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आने का कारण बता रहे हैं कि मैं संसार में कब आता हूँ और क्यों आता हूँ. बहुत सुंदर श्लोक है, तो कृपया मेरे साथ साथ इसको उच्चारण करने का प्रयास कीजिए. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. शब्दों का अर्थ देखिए. यदा यदा यानी जब भी और जहां भी, निश्चय ही धर्मस्य धर्म की ग्लानि यानी हानि होती है या पतन होता है. भवति होती है भारत हे भरतवंशी. अभ्युत्थानम प्रधानता. अधर्मस्य अधर्म की. तदात्मानम सृजाम्य हम. तदामन उस समय आत्मानम यानी अपने को सृजामि प्रकट करता हूँ अहम मैं. अनुवाद. हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ. इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाक्षलाकय. चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले. स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगरघुनाथवितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं. श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च. हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति, गोपीश गोपीक कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचनम गारंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंच कल्पतरु भयस्य कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासुदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। आज भगवान इस संसार में आने का कारण बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा अर्जुन को, अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ मैं अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम यात्ममायया, फिर भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य स्वरूप में प्रकट होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने ये बता दिया कि मैं हर युग में आता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है सृजा तदात्मानं सृजामि हम, सृजामि का मतलब ये होता है कि मैं प्रकट होता हूँ, इसका मतलब जन्म लेना भी होता है, इसके अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे सृष्टि की रचना होती है उसको भी बोलते ना सृजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान कभी भी भगवान को सृजन इस तरह ऐसा नहीं है कि जिस तरह सृष्टि के अन्य लोग या जीव उत्पन्न होते हैं उस तरह से भगवान भी होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। सृजामि हम मतलब भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद और श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यहाँ पर सृजामि हम शब्द महत्वपूर्ण है, सृजामि सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती। भगवान ने पहले कह दिया ना श्लोक में कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ अजोपि सन्नव्य, तो फिर आज कैसे बोल सकते हैं कि मैं जन्म लेता हूँ। तो उसके अनुसार यहाँ पर बताया जाता है, श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती है, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत स्वरूप से विद्यमान शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। भगवान शाश्वत है, इटर्नल है, सनातन है, ऐसा नहीं है कि बस जब भगवान संसार मतलब जब भगवान के आने का टाइम होता है उस टाइम पर ही भगवान उदित होते हैं, ऐसा नहीं है, वो इटर्नल स्वरूप है भगवान का। अतः सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यदि भी भगवान कार्य कर्म अनुसार अर्थात ब्रह्मा की एक दिन में सातवें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, ये भगवान के आने का समय, ये भगवान श्री कृष्ण के आने का समय है। ठीक है, यहाँ पर तो जैसे भगवान श्री प्रभुपाद जी बताते ब्रह्मा के एक दिन में सातवें मनु यानी कि सातवां जो मनु होता है ना, एक दिन में टोटल कितने मनु होते हैं 14 मनु होते हैं और सातवां मनु अब भी चल रहा है पता है, और इस मनु का नाम है वैवस्वत मनु। इस मनु के 28वें युग में अभी जो जस्ट गुजर गया है ना द्वापर युग, उसमें भगवान इतने समय के बाद उत्पन्न होते हैं और वो अभी हमारा सौभाग्य है कि हम उसी मनु में हम हमारा जन्म हुआ है जिसमें कि जिसके द्वापर युग में भगवान स्वयं साक्षात रूप में अवतार लिया उन्होंने। तो भगवान यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्रह्मा के एक दिन में सातवें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवान को बोलो भाई आप इसकी बदली में दूसरी जगह पर नहीं हो सकते, बस ये टाइम में आपका निश्चित किया गया है तो आप उसी में जन्म लोगे। और भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान अपनी इच्छा से आ सकते हैं, तो यहाँ पर वो भाग्य नहीं है। आगे श्री प्रभुपाद जी को कहते हैं क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए गए हैं और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि वेद में बताया गया है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कैसे जीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हर चीज वेद में बताई गई है। और जब जब जीव या मनुष्य उन शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करता है तो अधार्मिकता फैल जाती है। फिर जब अधार्मिकता मनुष्य अधार्मिक हो जाता है, अधर्म हर जगह पर फैल जाता है, तो फिर क्या होता है, भगवान कहते हैं धर्म का यदा यदा ही धर्मस्य, जब ग्लानि यानी जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म जो है वो बढ़ जाता है, तब भगवान बोलते हैं मैं आता हूँ। अब जो वेदों में या शास्त्रों में नियम बताए गए हैं वो किसी मनुष्य द्वारा नहीं बताए गए हैं, बल्कि यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जो वेदों के नियम हैं ये सारे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। जो धर्म जो बनाया गया है, धर्म तो साक्षात आगे बताएं, वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय से भगवान द्वारा ही उच्चरित माने जाते हैं। भले ब्रह्मा जी ने पहले तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो ब्रह्मा जी को पहले ज्ञान दिया गया, तो हृदय से ब्रह्मा जी के भले बाद में वेद उच्चरित हुए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित किए जाते हैं वेद। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। जो धर्म के नियम वेदों में बताए गए हैं, शास्त्रों में बताए गए हैं, वो साक्षात भगवान के आदेश है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो धर्म है वो किसने स्थापित किया है, भगवान ने स्थापित किया है। धर्मम तो साक्षात, और कोई धर्म को स्थापित नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवद गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। भगवद गीता में यही बताया गया, अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि आप क्षत्रिय हो, आप अपने धर्म का पालन करो, जिस जगह पर आप हो वहीं पर आप रहकर अपने धर्म का पालन करो, यही शास्त्र की इच्छा है, यही शास्त्र का आदेश है। और शास्त्र किसने कहे हैं, वेद किसने कहे, साक्षात भगवान ने। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है। और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। अब वेदों में अलग अलग आदेश बताए गए हैं, वो इसलिए है क्योंकि जीव की इच्छाएं हैं, तो इच्छाओं के अनुसार उसको अलग अलग आदेश दिए गए हैं। लेकिन अंतिम आदेश भगवान कृष्ण भगवद गीता के 18.66 में बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज, ये भगवान है यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, और वहां पर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि धर्म वही है जो मैं कहता हूँ, और धर्म वही है जो तुम मेरी शरण में आओ। अगर तुम मेरी शरण में आ रहे हो तो सबसे बड़ा धर्म यही है, क्योंकि मैं कहता हूँ मेरी शरण में आओ। और अगर तुम्हें अपराध लगता है तो भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा है तो अपराधों को क्षय करने वाला भी तो मैं ही हूँ, तो मैं तुम्हारे अहम तो हम सर्व पापे भी हूँ। तो यहाँ आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की और अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी आसुरों द्वारा इन नियमों का व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। अब वैसे तो वैदिक नियम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब स्टेप बाय स्टेप भगवान की शरणागति सिखाते हैं, लेकिन जब असुर प्रगति वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इन नियमों को गलत मतलब नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो फिर भगवान को प्रकट होना पड़ता है। श्रीमद् भागवतम पुराण में से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं। उनका आदर भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। भौतिकतावादी लोग क्या कर रहे थे, वेदों को मतलब आड़ ले रहे थे वेदों की, और क्या कहते थे, जब अभी तक महात्मा गौतम बुद्ध का है ना जन्म नहीं हुआ था, तो फिर वेदों की आड़ में लोग पशु बलि देते थे सिर्फ भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो बोला वेद में लिखा हुआ है ना इसलिए हम कर रहे हैं, फिर इस तरह से करते। लेकिन यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान है, यानी कि वेद में ऐसे नहीं लिखा है जब तुम्हारा गोश्त खाने का दिल करे तब पशु बलि दे दो, ऐसे नहीं लिखा, कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि देने के विषय में कुछ सीमित विधान है, ऐसे नहीं है जब दिल करे जैसे दिल करे। किंतु आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे, वो उनका स्वभाव आसुरी था तो फिर वो वेदों की आड़ लेकर ऐसा कर रहे थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। फिर उन्होंने ये बताया कि भाई वेद में ही जो लिखा हुआ है वो सही नहीं है, क्योंकि अनाचार हो रहा था, इतना अहिंसा इतनी हो रही थी, तो भगवान ने डायरेक्ट से वो इंस्टेंट एक्शन लिया और फिर बता दिया कि वेद बिल्कुल गलत है, वेदों के ऊपर आपको नहीं पालन करना है बल्कि अहिंसा का पालन करना। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्र में हुआ है, और सब बताते हैं शास्त्र यही भगवान का अवतार क्यों हुआ। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में अपनी इच्छा से प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति के में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि भगवान गौतम बुद्ध ने ये नहीं कहा ये नहीं कहा कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, ऐसा नहीं कहा, और ना ही भगवान के किसी दूसरे अन्य अवतार ने ऐसे किया, क्योंकि यहाँ पर श्री रूपा जी बोलते इतना ही बोलते हैं जितना कि उन उस परिस्थिति में जन समुदाय को समझ में आ सकता है। हर किसी को हर बात समझ में नहीं आती, तो भगवान सारी बातें बोलते भी नहीं है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है भगवान का। क्या उद्देश्य होता है, लोगों को ईश भावना भावित करना, लोगों के अंदर भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना, कि जो धर्म के नियम है उनको फॉलो करो और भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ो। यही भगवान के आने का एकमात्र लक्ष्य होता है कि जीव जो इस संसार में दुख भोग रहा है वो कैसे भी करके ये न केन प्रकारे अधर्म को छोड़े, धर्म के नियमों को स्वीकार करे, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप भगवान की ओर आ सके। जिस स्टेप पर आप हो उसी स्टेप से भगवान आपको उठाते हैं, कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के स्वरूप में भेजते हैं, या वेश बदल कर स्वयं भी प्रकट हो जाते हैं। अब ये भगवान की इच्छा अपनी मर्जी से, कभी वो स्वयं आते हैं, कभी अपने पुत्र को भेजते हैं, कभी दास को भेजते हैं, तो कभी स्वयं ही अलग कृष्ण कोई दूसरा वेश रूप धारण करके आ जाते हैं कि मेरे बच्चों को मैं किसी तरह से अपने प्रति आकर्षित कर सकूं। श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, यानी कि उस समय अर्जुन को भगवान ने केंद्र बनाया था, लेकिन किसी के भी भगवान को आदेश देना था तो किसी को भी केंद्र बना सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की उपेक्षा अधिक जागरूक था, यानी कि वो ज्यादा इस बात को समझ सकता था। अर्जुन के अंदर क्वालिटी थी, और सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी कि भगवान का भक्त था, भक्तों से में सखा चेती, वो भगवान का भक्त था, भगवान से प्रेम करता था, तो प्रेमी के जो कोड वर्ड्स होते हैं ना वो प्रीतम ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। तो भगवान की बात को अर्जुन, जो क्योंकि उसका दोस्त भी था और उसका भक्त भी था, उसको समझ सकता था। और आगे श्री प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि दो दो मिलकर चार होते हैं, यह गणित नियम प्राथमिक शिक्षा कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। अब दो और दो तो चार ही होते हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास वाला बच्चा बोले या फिर हायर जो कॉलेज का हो वो बोले, लेकिन वो दो और दो तो चार ही होते हैं। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्नतर होता है, मतलब ये स्टार्ट का नियम तो हर जगह वही चलेगा, लेकिन फिर भी हाई मैथ होता है ऊपर, गणित उच्च स्तर होता है बहुत हाई होता है, और लोअर स्तर मतलब होता है निम्नतर भी होता है। तो जिस जिस स्टेज पर आप जाओगे उस हिसाब से आपको शिक्षा दी जाएगी, लेकिन जो मेन रूल है वो चेंज नहीं होगा। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं। प्रत्येक अवतार में भगवान के आने का एक ही कारण होता है कि बद्ध जीव को भौतिक भावबंधन से छुड़ाना, तो एक ही सिद्धांत की शिक्षा देते हैं। परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होती है। अब जैसी परिस्थिति होती है कभी है ना भगवान उसके हिसाब से ही देते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि ये भगवान ने अच्छी शिक्षा दी ये दी, लेकिन मेन भगवान का कारण क्या होता है आने का, कि एक ही कारण होता है, सिद्धांत वही होता है कि भौतिक भावबंधन से छुड़ाना चाहते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि आगे बताया जाएगा कि धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्ण आश्रम को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बताया कि धर्म के सिद्धांत स्टार्ट होते हैं वर्ण आश्रम को स्वीकार करना। श्री प्रभुपाद जी जब भी धर्म की बात करते ना तो उसके साथ में वर्ण आश्रम की बात करते हैं कि वर्ण आश्रम धर्म जो है वो वर्णाश्रम से स्टार्ट होता है। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्भोतित करना है कि हर जगह पर जहाँ पर भी अवतार होता है भगवान का तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को फैलाए, कि कृष्ण भावनामृत के जीव भगवान के सानिध्य को कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्राप्त करे, कि जीव जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस के में जीव में ये शरीर हो मुझे शरीर के लिए कार्य करना उसको छोड़कर ये याद करे कराए उसको कि आप आत्मा और भगवान का अंश हो और भगवान के साथ प्रेम करना ही आपका एकमात्र लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का एक ही कारण है कि आप इस संसार में ऐसा कार्य करो, भगवान की कथाओं का श्रवण करो, भगवान के पवित्र नाम का जप करो और वापस से बैक टू गोडन जाओ। ये कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। अब परिस्थिति के अनुसार ये बात इतना क्लियर बता सकते कभी कभी, और कभी कभी परिस्थिति में क्योंकि लोग के अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती ये सब समझने के लिए तो वो इतना क्लियर नहीं बताते, लेकिन तथ्य वही होता है, आने का कारण वही होता है। तो आज भगवान ने अपने संसार में आने के कई कारण बताए जिनमें मेन यही है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ। यहाँ पर यह बात समझनी है कि यदि कोई कहता है कि भगवान नहीं है तो यह मूर्खता है, क्योंकि इस संसार का ये जो नियम इतना अच्छे तरीके से चल रहा है उसका मतलब है वो नियम को चलाने वाला कोई ना कोई तो है। हाँ, बगैर नियम के कोई भी जो है ना वो नियम नहीं चल सकता है ना। छोटा सा भी अगर हम नियम बनाते हैं, रूल बनाते हैं, तो रूल को स्थापित करने वाला कोई होता है। तो इस संसार में हर चीज नियमानुसार चल रही है, इसका मतलब है कि जरूरी कोई नियामक है जो जो इस संसार के अधर्म को या फिर जब भी नियम रूल्स को कोई तोड़ता है तो वो उसको आके पनिश करेगा। एक डिवोटी थे वो डॉक्टर के पास गए, वो बीमार हो गए थे, डॉक्टर के पास गए, वो जप कर रहे थे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, उसको बहुत तकलीफ भी हो रही थी साथ में। तो फिर है ना डॉक्टर ने कहा तुम क्या कर रहे हो, कब से कृष्ण 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 हरे 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 कर रहे हो? तो उसने बोला मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, मैं भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ। तो बोला तुम भगवान को मानते हो? तो बोला हाँ, भगवान को कौन नहीं मानता। बोले भगवान अगर होते, डॉक्टर ने कहा अगर भगवान होते तो क्या तो वो तुमको इतनी तकलीफ देते? इस संसार में देखो कितने लोग तकलीफ में गुजार रहे हैं, कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग परेशान हैं। अगर भगवान होते तो क्या इन सब की परेशानियां दूर नहीं होती? तो उसने बोला कि नहीं भगवान तो है। बोला मैं नहीं मानता भगवान है। तो फिर है ना, फिर वो उसने कहा कि अभी मुझे घर जाना है। बोला आप मुझे, मैं भी घर जा रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा मैं भी घर जा रहा हूँ, मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो रास्ते में वो सारे दिखाया, मतलब बोला इधर उजान मुश्के उस जगह पे उसको लेकर गए जहाँ पर बहुत सारे बीमार लोग खांस रहे थे और है ना बीमार लोग पड़े हुए थे। तो बोला देखो बेचारे कितना कर्रा रहे हैं। भगत ने उसको डॉक्टर को बताया देखो कितना तकलीफ में है, कितना कर्रा रहे हैं। तो ये इसलिए बीमार है क्योंकि संसार में कोई डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा अरे मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि कोई डॉक्टर नहीं है। मैं हूँ, ये इसलिए तकलीफ में है क्योंकि ये मेरे पास नहीं आए हैं। अगर मेरे पास आते ना ये ट्रीटमेंट करवाते अपना तो ये ठीक हो जाते। तो उसने भी कहा कि संसार में सब लोग दुखी है ना, वो इसीलिए है क्योंकि वो भगवान के पास नहीं गए। इसका मतलब ये थोड़े भगवान नहीं है। जिस तरह मरीज के होने का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर नहीं है, उसी तरह दुख के होने का मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं है। भगवान है, लेकिन क्योंकि जीव अपनी इच्छाओं की पूर्ति में इतना बिजी है कि वो ये देख ही नहीं रहा है कि मैं इच्छाएं ही मुझे दुख, मेरे दुख का कारण बन रही हैं। तो भगवान के प्रति सरेंडर नहीं होता है, भगवान के पास जाता नहीं है अपने दुखों का निवारण करने के लिए। तो फिर है ना इसलिए लगता है कि पता नहीं ये लोग इतने दुखी हैं। लेकिन यदि हम भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें इस भवबंधन के दुखों से दूर, दुखों से मुक्त करा दो, तो भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो आज के श्लोक में श्री प्रभुपाद ने बताया कि भगवान ने नियम बनाए हैं और अगर कोई चाहता है, अंत में श्री प्रभुपाद ने एक बहुत ही सुंदर बात बताई है कि धर्म की उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते कि भगवान चाहते हैं, भगवान ने जो नियम बनाए हैं चार वर्णाश्रम। जैसे अगर कोई चाहे कि मैं धर्म की ओर सिंसियरली सीरियस होकर अग्रसर होना चाहता हूँ और उस वो पूछे कि मैं कैसे करूँ, तो सबसे पहला उसके लिए यही सिद्धांत है कि हर जीव जो है वो जिस स्टेज पर है, जिस स्थिति में है, उसके अनुसार कार्य करें। अगर वो ब्रह्मचर्य है तो उसके अनुसार, ब्रह्मचर्य अनुसार अगर वो पालन करता है तो फिर, और अगर गृहस्थ गृहस्थ के नियमों को पालन करता है, वानप्रस्थ और सन्यासी, तो समझो उसने धर्म को स्वीकार किया है। अब वो धर्म के तरीके से चलने के लिए तैयार हो गए। तो अगर इस हमारा ये वर्णाश्रम धर्म इतना, वर्णाश्रम ऑफर्स अ सोशल स्ट्रक्चर विच हेल्प पीपल टू ग्रो इन स्पिरिचुअलिज्म, उसको सुविधा प्रदान करता है। आप जैसे भी जिस जगह पर हो, जीव जिस स्टेज पर है, तो वो आध्यात्मिक उन्नति करेगा। अब लोग इसको सोचते हैं, कोई कोई लोग सोचते हैं कि ये तो वर्णाश्रम धर्म जो है वो ऐसे है, जात पात है कि इसमें ये है शूद्र हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, लेकिन ये आपके जन्म के लिहाज से नहीं है, आपके कर्मों के अनुसार और आपके गुण के अनुसार, गुण कर्म विभागश, आपके गुण और कर्म के अनुसार आप जिस स्टेज पर हो वहीं से आपको ऊपर उठना है। देन वर्ण आश्रम प्रोवाइड अ सोशल स्ट्रक्चर फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। अगर हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना चाहते हैं, आध्यात्मिकता में उन्नति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें वर्णाश्रम धर्म को एक्सेप्ट करके वहां से उन्नति करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जिस जगह पर हम हैं वहां से हम उन्नति करें। तो श्री प्रभुपाद ने कहा है कि आगे इसके विषय में विस्तार से बताया जाएगा। अतः भगवान ने यही कहा कि क्योंकि मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ, तो जब जब मेरे भक्तों को कोई कष्ट पहुंचता है ना, परित्राणाय साधुनाम, मैं अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकता। फिर ये न कि ना प्रकार कभी मैं स्वयं आता हूँ, कभी अपने भक्त को भेजता हूँ, कभी किसी दास को भेजता हूँ, कभी मैं स्वयं ही रूप बदल कर आ जाता हूँ, लेकिन कभी भी उसको दुखी नहीं देख सकता जो मेरी शरण में आता है। भगवान कह देते हैं अर्जुन को, कौन्तेय प्रतिजानीह नमे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठाई है। तो मेरे भक्त को जब जब तकलीफ होती है, जब जब दुख होता है, तो मैं कैसे भी करके उसके दुख का निवारण करने के लिए प्रकट हो जाता हूँ और उनकी रक्षा करने के लिए भले मुझे किसी का भी विनाश करना पड़े। बहुत ही खतरनाक कितने ही राक्षस होते हैं जो भक्तों को पीड़ा देते हैं, तो कितने परित्राण है साधु ना, विनाश है तो दुष्कृता, जो दुष्ट होते हैं उनका विनाश करने कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ, तो उनकी रक्षा करने के लिए मैं किसी का भी विनाश करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो ये भगवान है, कितने करुणामयी है, कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों के साथ, सदैव उनका नाम जपेंगे और उनकी शरण में रहेंगे तो वो सदैव हमारी रक्षा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय कृष्ण।